कितने कितने भाव हैं
दोनों दूसरों से ही आपस चौथों के साथ में यशोदा जी के वन में जाकर के मैया यशोदा जी का चरण बंदन करती हैं और यशोदा जी के आंखों छलछला जाती हैं और अपनी अपने बेटे के समान उनको समझाते हैं। सब स्थिति में भी देखा जाता है कि यशोदा कहते हैं तू हमारे कुल से जैसा हमारा प्यारा है तू भी हमारी प्यारी आशीर्वाद देती है और फिर रोहिणी के कर्म उनको समर्पित कर देती है। कहते हैं कि हमारे घर में सारे भंडार हैं, रोहिणी जी इसकी सबकी व्यवस्था करेंगे और रसोई बनेगी ये बेटी बने बनाती है रसोई जो राजा जी कृष्ण के बिना में ऐसी बंद होती है कि ठंडी चीज भी चुभ कर जाती है जैसे गंदे इत्यादि समुद्र पत्ते इत्यादि। आज यहाँ पर 20-25 चूल्हे जल रहे हों या कितने चूल्हे जल रहे हैं और उसमें लकड़ी दी जा रही है चारों तरफ से ताप है और उनको ये सब ताप की शीतल लग रहा है कृष्ण के मिलन से बन जाने के बाद में रोहिणी भैया ने जो दादी ने सब लोगों को सखाओं से सही कृष्ण को जाया रमिष्ठा जी ने बड़ी चतुराई से कृष्ण का औचित्य किया। उन्होंने कहा जैसे ये जो प्रसाद दिया है ठाकुर जी को जो भोग लगाया है कृष्ण के भोजन के अतिरिक्त हुआ ये तुम श्रीमती राधिका जी को दे दो और उनको अच्छी तरह से खिलाना और सब सब सदंग देकर के सौगंध देकर सब शपथ देकर ये उनको खिलाने के लिए कहते हैं किंतु वो नहीं खाएंगे जब तक कि कृष्ण का उसमें वो झट चतुराई से श्रीमती कनिष्ठा जी बड़ी चतुराई के साथ में कृष्ण के जो अच्छे अच्छे जो पदार्थ दिए गए हैं उनको चतुराई से निकाल करके उसके अंदर भी मिला देती है कि किसी को मालूम नहीं जो अलग से वो है और वो उनके पास में भिजवा देती हैं वो भी खाते हैं दोनों का मिलन होता है कृष्ण और गोचारण के लिए कुर्बान चले गए वहां जाकर के दो चार मिश्र और इधर में कृष्ण को विदा करने के बाद में यशोदा नंदी इत्यादि लौट आए सखियां भी लौट आई किसी प्रकार से अब विलंब उनको नहीं कहा जाता किसी प्रकार से जावट मिला अब वो कोई बहाना बनाती हैं कि हम उससे दर्शन करें और उसी समय में इतनी विलंब में सप्त हो जाती हैं कि विशाखा जी से और ललिता जी से देखा नहीं जाता तो वो रूप मंजरी को भेज देती है कृष्ण को देखने के लिए किस स्थिति में कहा और कहते हैं और ये बड़ी चतुराई से जाकर के उनसे मिलती है और उत्कंठा देखती है जो उनसे उनकी मिलने की उत्कंठा सीखनी है और नहीं और जगाती है उत्कंठा जगाने के बाद में वहां से आती है क्योंकि कृष्ण का मिलना बड़ा कठिन है इनकी अब परीक्षा लेते हुए वहां पर कृष्ण की परीक्षा लिया हो रही है। ये जो वियोग का समय है इतनी उत्कंठा जी उनको है जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं इसी को यहाँ पर कृष्ण के वियोग राधा दोपहर का समय है कृष्ण गोवर्धन की तराई में गायों को चरा रहे हैं पार्टी में किसी प्रकार से उनके रूप में मिले से मिला उन्होंने इंगित से कुछ ऐसी चीज की जिससे कि ये प्रतीक हो उन्होंने कमल की कोई माला उनको लेकर के उनको दी यही उनको दी कमल का फूल का मिलना मैंने कमल की माला का मिलना मैंने ये मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ देखिए ये पहुंच गए और किसी के बीच में इतनी उत्कंठी के हैं जो उनसे रहा नहीं जाता विशाखा जी को अपनी उत्कंठा का कारण ये बता रहे हैं उसी कारण
अविद्या की बात है। तेईस लोग पढ़ी आपने पढ़े मन सात तो फिर और कुछ नए उन्हें कर दिया विदा। इसलोग अपने आप पाठ करते हैं और उसको सुना रहे हैं, उसका अर्थ बतला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसका अर्थ करते हैं। श्लोक ये है, सोमदास जामित सिंधु भंग रमना चित्त और कृष्ण प्लावत कर्णानंदी सनर्म रंग रचन कोटिंदु सीतांग सौरभ्यामृत संप्लाव आकृत जगपति मूष रम्याग श्री गोविंद सपर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि आदि में हे आदि हे सौरभ्यामृत सिंधु। पहले इस श्लोक यह श्लोक कहां से आया के समय से कामित में इसका वर्णन और यह श्लोक है गोविंद लीला। तो इस तरह का कम है नहीं कृष्णदास कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे 100 वर्ष बाद में आए और महाप्रभु वहां पर बैठे हुए कैसे वो बतला रहे हैं इस श्लोक को। ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का उच्चारण किया इसलिए ये उनका अपना नहीं है। ये समझो मूलतः ये चैतन्य महाप्रभु के मुख से राधा भाव में अविष्ट होकर के अब उसी को स्वरूप दामोदर जी अपने पर्चे में लिख लिया और वो पर्चा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास है और उन्होंने ये पर्चा उनको सुनाया तब गोविंद लीलामृत की रचना हुई उसमें ये श्लोक ऐसे समझो नहीं तो यह संभव पर नहीं था। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहें चैतन्य महापुरुष के मुख से निकला हुआ यह श्लोक है। इसलिए आठ से श्लोक तो वो है और एक इसको भी रख लो और एक इसको और
नौ प्रेम
प्रेम
धरम
प्रकार प्रेम गंधर्मे हरा सौभाग्य धर्म प्रकार वंशी विलास्याम अवलोकन दिना दीर्थात्म ये सब महाप्रभु जी के मुख से निकले हुए हैं। यहां पर जबकि यहां पर लिखा हुआ जो गोविंद लीला में उसका श्लोक है तो इसको इसी रूप में समझो चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में पहले ये सब दामोदर राय रामानंद को गंभीरा में ये बातें कह करके उसका अर्थ नहीं करते लीलामृत वर्णन करने का या श्लोक का अर्थ प्रकाश करना या व्याख्या करने की शैली इन्होंने कहां से प्राप्त की रघुनाथ दास के स्वामी से सीखी। जहां जहां वो रघुनाथ दास जी ने कहां से सीखा और महाप्रभु से स्वयं जी सर्व दामोदर जी इनको बतला रहे हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर के बतला रहे हैं। देखो आज ऐसे हुआ आज जो श्लोक उन्होंने ये पाठ किया और उसका इतना सुंदर अर्थ किया जिसको लोग जगत में कल्पना नहीं कर सकते कौन कह रहा है सब जानते और रघुनाथ दास गोस्वामी को पिला रहे हैं उस अमृत को। तो सौंदर ज्ञानृत सिंधु भंग ललना चित्ता दृशम प्लाव अरे श्लोकों का अर्थ समझो सौंदर ज्ञानृत सिंधु कृष्ण के सौंदर्य का सौंदर्य जो है वो अमृत का समुद्र है। समुद्र पास में खड़े हुए पर्वत को उसके चरणों को स्पर्श करता है समुद्र का पानी। यदि
हिमालय जैसा पहाड़ भी उसके पास में खड़ा हो तो ये क्या करेगा? समुद्र का पानी तरंगे उछल कूद करके उसके चरणों को धो करके बस नीचे शांत होकर के लौट गए। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं हम ललनांकित अदृशम प्लावक, ऐसा ये अमृत सिंधु है उन्होंने तरंग उसके तरंगे जोर से उछल गए। उछल करके क्या करती हैं? साधारण समुद्र की तरंगे पर्वत के दोष को बहुत करें और कृष्ण का सौंदर्य में जो तरंगे होती हैं उसकी एक बूंद भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा तब जब बताया एक बिंदु क्या करता है बड़े बड़े पर्वत को एकदम डुबो देता है और उसकी रग रग में अपने पानी को पहुंचा देता है। ये समुद्र का पानी किसी पर्वत के अंदर में नहीं जाएगा किंतु वो पानी क्या करता है जहां भी पर्वत के अंदर में कोई भी छिद्र है कोई भी जगह है कहां स्तन प्रांत हाथ पास जो कुछ है अंदर बाहर कर और ये क्या करता है पर्वत के बाहरी प्रदेश को चरण को स्पर्श होश करके नीचे चला जाए। अब वो पर्वत क्या है? इधर तो समुद्र का जल, इधर तो हुआ हिमालय इत्यादि या और भी पर्वत है या पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियां दक्षिण में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट ये पहाड़ियां हैं मद्रास के साइड में एक और बॉम्बे के साइड में उत्तर में वो क्यों पहाड़ियां हैं सिलसिला चला गया तरंगे आती हैं नीचे से धो सकते पहाड़ अचल अटल अटल रहता है। वो ठीक अपनी अचल रहता है सच से मत नहीं होता बहुत ऊंचा कभी भी हिलने वाला नहीं जोड़ने वाला नहीं ठीक उसकी जड़ें बहुत मजबूत उसके शिखर को छुपाना उसको दबा देना ये समुद्र के लिए कठिन है। अब इसको तुलनामूलक दृष्टि से हम अब कृष्ण पर लाए कृष्ण का रूप आदि जो माधुर्य है वो जो अमृत का सिंधु है उसमें तरंगे इस समुद्र से कोटि गुण ऊंची उठती हैं और ये उस पर्वत के शिखर को भी अपने अंक में समा लेती है और रग रग में प्रवेश कर उसको जल में बना देती है। अब ये पर्वत क्या है? ये तो कृष्ण का रूप तो हुआ अमृत का समुद्र और ये समुद्र की तरंगे भी उस रस रूप के से जो चित्त में आने वाली जो भाव है उसकी तरंगे हैं। पर्वत क्या है? नारी चित्त कहा है नारी मैंने क्या है वो किया और दूसरे नारी नहीं इनका प्रतिपत्त धर्म अरुंधति और अनुसुईया इत्यादि सभी ऊंची है अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति इनका प्रातिपत्य जगत में जारी है सीता जी का भी प्रातिपत्य ये सब लोग हैं किंतु गोपियां जो हैं ब्रज की इनका जो पातिव्रत धर्म है वो हिमालय के ऊपर से थी इन लोगों को भी पार करता हुआ बहुत ऊंचा है इन लोगों का भी जो पातिव्रत धर्म है अरुंधति और अनुसुईया का ये पातिव्रत ठीक नहीं है क्यों इनका चित्त कृष्ण में और अपने पति में भी है वशिष्ठ जी और अत्रि ऋषि में भी इनका अपने अपने पत्नियों के प्रति भी या कृष्ण के प्रति या राम के प्रति भी है और अपने धर्म के प्रति भी है लोक लज्जा के प्रति भी है ये सब इनमें और गोपियों का पातिपत्र कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं है असल
और असल कहां तक उसकी जड़ है कोई ठीक नहीं और कभी भी हिलने वाली नहीं है। इसलिए अरुंधति और अफ्रीकी अनुसुईया इत्यादि उनकी पतिव्रत धर्म की वांछा करते हैं, अभिलाषा रखते हैं। इसलिए गोपियों का जो धैर्य, गोपियों का पतिव्रत धर्म, उनकी लज्जा, ये एक एक शिखर है। जैसे हिमालय पर्वत में बहुत से शिखर है, गौरीशंकर, एवरेस्ट और कौन कौन कितनी ये चोटियां हैं, ऐसे गोपियों की ये सब चोटियां हैं। क्या किसी भी अपने धर्म से वे विचलित नहीं हो सकते। ये एवरेस्ट की चोटी है और धर्म को भी नहीं छोड़ सकती, इस तरह से ये अटल है और बहुत ऊंची है। किंतु फिर भी कृष्ण का ये रूपी जो समुद्र है उसकी एक तरंग से ये चूरमार होकर के समुद्र में वो, इसलिए उसकी तुलना की। तो इसलिए समदाज्यामृत सिंधु भंग ललनाचित्त, ललनाओं का चित्त जो है वो कैसा है, अत्रि पहाड़ लल्ला मैंने सभी एक से एक, ये सभी इतनी 360 प्रकार की गोपियां हैं, एक एक के क्या है शिखा, और इनमें 8 शिखाएं चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची हैं, और इन 8 शिखाओं के बीच में एक जो है श्रीमती राधिका जी, वो सुंदर उसकी सीमा नहीं है कितनी ऊंची है। किंतु समुद्र की एक कण आकर के तरंगों की एक कण ऐसी प्रबल है कि उस सबको उसी तरंग को भी दबा देती है। उसी को यह कह रही है विशाखा जी, ताकि हमारा धैर्य, हमारा व्रत, लज्जा, ये सब कहां से मिले, एक क्षण में ध्वंस हो जाती है, उसमें डूब जाता है। संप्लावक उसको भी सम्यकूपेण प्लावक एकदम उसको डुबा देती है। डुबादा ने संप्लावक माने क्या, उसमें जितना ऊपर से नीचे है पानी में डूब करके पानी ही जैसा हो गया, उसके रग रग में पानी भर दिया है। ये है कर्णानंदी न परंत वचन कोट इंदु शीतांगत। दूसरा हुआ कर्णानंदी सनर्म वचन, कर्ण को आनंद देने, मेरे कर्णों को आनंद देने वाले उनके परिहास में नम्र और कोमल चित्त को लागू आनंद देने वाले ऐसे कृष्ण के वचन हैं। कोई भी स्त्री अपने माने कोई मैंने गोपियों के लिए कर अपने सतित्व को एक सेकंड के लिए भी नहीं रख सकती, लोक लज्जा को भी नहीं रख सकती, घर के उनका चित्त हो जाता है, रूप जैसा है और वैसे ही शक्ति इनकी बोली में है। इतना मधुर बल्कि मधुर से मधुर है, किंतु कृष्ण की मुख से निकली हुई जो वाणी है प्रिय, ये कितना प्रेम से निकला हुआ परिहास में वचन कहता, कहां की रहने तुम कौन है यहां आ गई। तो उधर से उत्तर आता है तुम जानते नहीं, तो जब जानता तब पूछता क्यों, तो तुम जानते नहीं जैसे मैं कौन हूं। राधा जी जैसे कहीं मधुर वाणी से कृष्ण का चित्त और कृष्ण इतने मधुर रूप से कह रहे हैं, न जाने क्या इसमें रस का समुद्र, अमृत का समुद्र सुमर रहा है। कुछ बानी इन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, तो मैं जानता हूं कि ये तू चोर है, बस ये जानता हूं हमारे बगीचे को तुमने चौपट कर दिया राउंड का, और जितने अच्छे अच्छे फूल है तुमने चुरा दिया और ये तुम्हारी पत्नी ने चुरा दिया। हाँ, आज परम धार्मिक को मैं देख रही हूं जो सामने है, कैसे परम धर्म, बचपन से ही परम धार्मिक है। जिसने कहा अच्छा बचपन से मैंने क्या कर दिया, अधार्मिक हो गया, तुम बड़ी भारी धार्मिक हो। धार्मिक इसलिए कहा जे जन्मते ही पूतना के प्राणों को आपने चोरी कर, और ऐसा कोई ब्रज निर्धर नहीं जहां पर कि आपकी यह सुशीलती और धार्मिक भाव व्यक्त करे, ऐसे आप धार्मिक धार्मिक। और इससे पेट नहीं भरा तो स्त्रियों की लड़कियों की कपड़े को चुरा लिया, ये तो और भी उन्नत धर्म। और इससे परम धर्म और ये समस्त ब्रज की लड़कियों को बुला करके राज किया, ये तो आपकी परम धर्म है। उसका धर्म इत्यादि सत्यों पर करना ही आपका धर्म इत्यादि जो परस्पर की जो बातें हैं, ऐसे ही सनर्म रंग रचना करणानंदी और कैसा सनर्म परिशाष परम मधुर परम आनंद। एक बात ऐसी सुंदर सुंदर सर जो कृष्ण को आनंद से भर देती है, या राधा जी को, या गोपी को आनंद से भर देती है। राधा जी कहती हैं ये ललिते ऐसा उपाय करो, ये भूत महाशय जी बड़े अपने को बलवान समझते हैं, इसलिए पौरुषी लीला में पुरुषों के जो कार्य हैं उसमें तो हम लोग को जीत लेते हैं, अब ऐसा कोई बात करो जिससे इनको अपने फंदे में डाल करके हम लोग इनको जीत सकें। तभी सब चुटकी बजाते हो जाएगा, तो कैसे तभी पाता का खेल आरम्भ कर दो, बस पाला पाता का खेल। जब कृष्ण हार जाए तो राधा जी कहती हैं ये वो चारणों जो ग्वालिये होते हैं इनका काम नहीं है,
गवालों का काम नहीं,
गाय के पीछे पीछे लटिया लेकर के चलो और उनके गोबर लेकर के इधर उधर घूमो, यहाँ पर बुद्धिमानों का काम है, यहाँ पर आपकी अकल नहीं चलेगी। उसमें मधुमंगल इत्यादि और कृष्ण की जो बातें हैं ऐसे परिहास युक्त होती है, उसको कहते हैं कि करणानंदी हम लोगों के लिए मन में इतना आनंद देता है तो कृष्ण के लिए तो बात ही क्या है। इसलिए करणानंदी कहो तो कृष्ण के लिए करणानंदी या राधा जी के लिए करणानंदी, यहाँ पर राधा जी का प्रसंग है इसलिए राधा जी के कर्ण में आनंद बढ़ाने वाला नर्म सब नर्म रंग वो क्या करती है। प्रेम वीक्षणम विहरणं च मे ध्यान मंगलम रहस्यम विदम या हृदय मन ये कैसे करना आनंदी ये सब विषय ये सब हम वचन है। कृष्ण यदि किसी कोई सुने ना विश्वनाथ चतुर्वती ठाकुर कहते हैं कि कोई भाव उद्भव कर भाव की स्थिति में कृष्ण का रूप देखा और मूर्छित हो गया तो कृष्ण आकर के मुरली लिए हुए उसके पास में बैठ जाते हैं और कहते हैं उठो 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 सखा उठो या सखी उठो, उनकी बात को सुन करके जब उठता और फिर उस बातों की चिंता करते माध्यम तक फिर उचित हो गया और फिर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कोमल और वो फिर उठ करके देखता है, फिर उनके सुकुमार भाव को देखकर फिर उचित हो गया। इस तरह से कृष्ण की पांच प्रकार की जो पांच प्रकार के जो उससे साधक टिकल हो जाता है, वो एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा चौथा सुनता है और यहाँ पर मुश्किल है एक चीज, एक ही समय में समस्त इंद्रिया कृष्ण के इन पांचों रसों में एकदम खुल जाती है, आकर्षित हो जाती है। इसके मन एक थोड़ा क्या करे, उसी को ये आगे बतलाए। तो ये रम्य वचन ये क्या करते हैं, गोपिंद्र सुतः सपर्वती गोपिंद्र नंदन के ये पांचों खेच रहे हैं इसको हमारे मन को। कोटिंदु सुशितांग का कोटिंदु करोड़ों करोड़ चंद्र की सुशिता को पराभूत करने वाली कृष्ण के अंगों की जो शीतल शीतलता है, इतना स्निग्ध इतना सुशीतल और उसमें सुगंध भी, ये सागर के चित्त को तो बात क्या, राधा जी के चित्त को भी प्लाज करके क्या करता है, पार्थिव प्रस्था में कुछ नहीं चला गया, लज्जा कहां चली गई, लोक लज्जा धर्म कर्म सब सौरभ्याम मृत संप्लवा अवृत जगत पीयूष पीयूष रम्याभर। कृष्ण के अगर हम इसका वर्णन कर रहे हैं सौरभ्य सौरभ किसको कहते हैं, सौरभ्याम मृत संप्लवा अवृत शोभा नासिका को सौरभ्य कृष्ण के अंगों की ऐसी सुंदर सुगंध है जब कभी भी जैसे कि उद्भव गए ब्रज में तो जो पति है जैसे ये कौन है, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, किंतु फिर कहते मैं जानती हूं ये कौन है, कृष्ण का दूत है, कैसे समझ लिए कृष्ण का दूत है, कृष्ण के अंगों का उतरा हुआ ये माला और उनके कपड़े से पहन करके आया है, यहां देखने से तो भूल हो जाएगी, हो सकता है कि वैसा दूसरे का हो, किंतु एक चीज है जो कभी भूल नहीं कर सकती, ये नाक भूल नहीं कर सकती, क्या नहीं भूल कर सकती, इस फूलों में जो सुगंध आ रही है वो फूलों के सुगंध को भी पराभूत कर क्रोणीभूत कर कृष्ण के अंगों का सुगंध आ रहा है, कृष्ण ने इसको धारण किया होगा, नहीं तो ये सुगंध इसमें आ नहीं सकते, इसलिए कृष्ण के दूध को छोड़कर वो भी प्रिय दूध होगा तब दिया, इसलिए कृष्ण के अंगों का ये सुगंध यहाँ पर है, इसलिए ये दूसरा को इसको दूसरे को नहीं मिल सकते, इसलिए कृष्ण का राधा जी कृष्ण के द्वारका जाने पर सोच रहे हैं, विरह में होते 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 ऐसे प्रलम्भ की स्थिति पहुंची कि उनको यह भ्रम हुआ ये कृष्ण द्वार आ गए हैं, भूल गई कि वो द्वारका गए, कहीं छिप रहे थे और उनके सामने आ रहे, सामने आने पर राधा जी देखती हैं कि उनका कोई आंख बंद हो गया, पति हैं पहले तो लड़ी जाए विचार था फिर मुस्कुरा उठती हैं उसी विरह में, हम मुस्कुरा कर कहते मैं समझ गई, कैसे समझ गई, अरे ये तो कृष्ण के अंगों का ये गंध आ रहा है, इसे जरूर कृष्ण तुम ये आर्य हैं या लंपट हैं आर्य वही चोर है ऐसे कर, कृष्ण को समझा तक पहुंचाने के लिए ये अंगों का नासिका का घ्राण ऐसा जिसको आदमी को पागल बना देता है, गोपियों को पागल बना देता है, और इस पागलपन के कारण उनका जितना पापी वक्त लोक धर्म लज्जा तीर जो कुछ है गोपियों को सामने देकर के भी लज्जा करना ये भी सब ये है उनका गंध सौगभ्यामृत अमृत को भी पराभूत करने वाला या सुगंध में जो कुछ सुगंध है उन सबको पराभूत करने वाला ऐसा कृष्ण के अंगों का ये सौगभ्य मैंने सुगंध है और आवृत संप्लवावृत जगत पीयूषम पीयूष माधव अधरम पीयूष शिव शरम न धर।
कृष्ण का ये मुखारविंद का अगर अमृत वो कहता है, इतना अमृत है वो जो पीयूष को भी कोटि कोटि बार परावृत कर दे। पीयूष से अधिक कोई अधिक सुस्वादु चीज नहीं है कृष्ण में, किंतु एक कण के द्वारा उससे समस्त माधुर्य को ये पराभूत कर देने वाली कृष्ण की अगर अमृत है, जो कि सब गोपियों के इन भावों को जो पहले बतलाया उनको क्षण मात्र बुला करके एकदम कृष्ण के इन पांच प्रकार की जो माधुरियां हैं उनका समुद्र है, उसने इनको आचूर दुबा। गोपिंद्र श्री गोपिंद्र सुत सब कर्षती बलात् पंचेन्द्रिया आलिने बलात् आकर्षती बल सुबत आकर्षण। और इसका चैतन्य महाप्रभु जो अर्थ कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के ही अर्थ का ये जो मैंने सूचना दी,